हरि ओम। पूज्य महाराज के पुण्य चरण वंदन। आज रविवार की थोड़ी सुस्ती भी है और उसमें थोड़े ही हाजिरी में थोड़ी मस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि महाराज जी पधार दें तो वही उत्साह से हम लोग को यहां प्रवचन में प्रेरित करते हैं। प्रबोध सुधाकर जो पूज्य महाराज जी ने अगस्त में करवाया था उसी को आगे लेके हम लोग चलेंगे। आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए हरिओम।
ओ सहनावत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतेर हर 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 महादेव। स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर, जो ज्ञान का पूरा ज्ञान रूपी अमृत का एक सागर है, उसी सागर में हम सब गोता लगाएंगे, जिस पर कई वर्षों से प्रवचन क्रम से चल रहा है। हम लोग 165 श्लोकों तक पहले विचार अगस्त में कर लिए थे, आगे विचार करेंगे। देखो एक मैं बताऊं, जिसे एक व्यक्ति का एक सपना होता है, है नहीं? क्या सपना होता है? पढ़ने वाले का सपना होता है मैं आईएएस बनूं, है नहीं? तो ऐसे महात्माओं का भी एक सपना होता है, मैं प्रेमपुरी आश्रम में पहुंचूं। सच बता रहा हूं, यहां के श्रोता, यहां की व्यवस्था, यहां के व्यवस्थापक, सबके लोगों का इतना एक भाव है कि यहां भी पहुंचने का, सच बता रहा हूं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर भी ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग तो महात्माओं के बीच में रहते हैं इसलिए जानते हैं। अरे आप वहां जाते हैं, मतलब यहां की एक प्रतिष्ठा है, अब पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में ही प्रेमपुरी की एक प्रतिष्ठा है, अपना एक सम्मान है। तो मेरा भी लगता है कुछ है, इस आश्रम से पूरे जन्मों का कोई कर्ज बहुत ज्यादा है मेरा भी, तो हमें भी आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, आने पड़ता है, कहूं तो दुख से आना पड़ता है, ऐसा नहीं, खुशी खुशी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप लोगों को कुछ सुनाने का एक अवसर मिलता है, आपके बहाने मेरा अपना चिंतन अपना श्रवण हो जाता है। 24 घंटे चित्त में एक चिंतन के अलावा दूसरा कोई चिंतन चलता नहीं। देखो कथा मैं मुंबई में और भी जगह करता हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन सच बताऊं यहां कथा करने में, यहां सुनाने में जो एक वो रहता है निडरता, जो मन में रहता है वो बोलने की हिम्मत रखता हूं, अन्य जगहों पे थोड़ा वो माहौल वातावरण ही नहीं बन पाता, क्योंकि संत अन्य जगह भी जाते हैं नंदा, लेकिन कहीं कुछ गुण है, कहीं कुछ गुण है, कहीं के श्रोता इतने अनमेच्योर हैं, एकदम पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी समझाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। पहले आते ही एक बैरियर लगाते हैं, महाराज जी थोड़ा सरल करना, बहुत ज्यादा बेनाम बताना है, पहले ही उनकी वो हो जाती है, क्या बॉर्डर लाइन बन जाती है। लेकिन आज तक यहां के किसी श्रोता ने आज तक कभी नहीं कहा कि महाराज जी थोड़ा सरल कर लो, बल्कि एक कहने वाले और हैं कि महाराज जी थोड़ा और गंभीर करना। इन्होंने बताया लोग कम होते हैं, मैं मानता हूं, क्या करें। आजकल तो एक महात्मा थे बहुत बढ़िया, वो सीधे कहते थे कि देखो जो पीएचडी की क्लासेज होते हैं ना, वहां स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, बहुत कम होती है। और प्राइमरी क्लास में, हाई स्कूल में उससे कम, बीए में उससे कम, पीएचडी में बहुत कम। तो ये प्रेमपुरी जो है पीएचडी होती है, यहां वेदांत की पीएचडी, अध्यात्म की क्या है, पीएचडी है। यहां बहुत लोग सच बताओ नहीं रहेंगे, चलते हैं हम लोग अपने इस विषय पर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे याद किया, दोबारा आया, भले ही सब्स्टिट्यूट में आया, लेकिन आया तो है, लेकिन आया ही। अच्छा मैं नहीं है भाई, इस समय तो मैं नहीं है। तो हम लोग जिसे बता रहे थे, इस ग्रंथ का नाम ही क्या है, प्रबोध सुधाकर। एक होता है बोध और दूसरा होता है प्रबोध। बोध माने हुआ ज्ञान, अब प्रबोध माने क्या हुआ, ऐसा ज्ञान जो अनुभव में उतरा हुआ हो, प्रकृष्ट ज्ञान। प्रबोध माने क्या हुआ, अनुभव जन्य ज्ञान का नाम क्या है, प्रबोध। उस अनुभव जन्य ज्ञान रूपी जो अमृत है, उस अमृत का यह क्या है, आकर है। आकर माने खजाना है, ढेर है। तो इस ग्रंथ के आरंभ में ही बताया था, पांचवें श्लोक में, साधक को जीवन में तीन चीजें लानी है, बहुत ज्यादा हाय तोबा नहीं किया है, क्या क्या, वैराग्यम, आत्मबोधो, भक्तिश्च इति त्रयम गदितम। क्या है, पहली चीज है वैराग्य होवे, दूसरी चीज क्या होवे, आत्मबोध होवे। क्योंकि देखो एक कोई भी वस्तु दूध है, दूध को रखना है तो कोई न कोई पात्र चाहिए नहीं चाहिए। यदि पात्र स्वच्छ होगा तो दूध उसमें क्या रहेगा, टिकेगा। यदि पात्र ही गंदा होवे तो दूध टिकेगा क्या, दूध फट जाएगा। ऐसे अंतःकरण में, अंतःकरण रूपी जो पात्र है, उस पात्र में वैराग्य के बल से विषयों को हटा लो, विषय रूपी जो गंदगी है उस गंदगी को क्या कर लो, हटा लो। तो आपका अंतःकरण उस ज्ञान को रखने में क्या हो जाएगा, योग्य बन जाएगा। लेकिन पात्र में हमने दूध तो रखा, लेकिन ऊपर से ढकना नहीं, तो क्या वह दूध सुरक्षित रहेगा या पीने योग्य रहेगा। हो सकता है छिपकली भी गिर सकती है, गिर सकती है, कई अखबारों में पढ़े हैं, अथवा मक्खी भी आ सकती है, अथवा कोई भी कमी आ सकती नहीं सकती। तो उस दूध को क्या करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा, तब वह ज्ञान क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, हमेशा टीका रहेगा। उसी प्रकार से आपको वैराग्य का कथन करके उस बर्तन को तैयार कराया, तैयार कराने के बाद आत्मज्ञान की भी चर्चा हो गई, आत्मज्ञान रूपी अमृत भी आपके भीतर क्या किया गया है, डाला गया है। कई सालों से चल रहा है, चार पांच साल से चल रहा है, आत्मज्ञान रूपी अमृत में भी डाल दिया गया। अब उस आत्मज्ञान रूपी अमृत को पा लिए तो उसके ऊपर अब क्या चाहिए, ढक्कन चाहिए नहीं चाहिए, तो ढक्कन है भक्ति। ढक्कन है क्या, भक्ति, जो इस ज्ञान को सुरक्षित रखेगा। यदि वह भक्ति नहीं रही, वह चिंतन नहीं रहा, तो ज्ञान सुरक्षित नहीं रहेगा, वह ज्ञान भूल जाएगा। कुछ काल तक तो स्मरण रहेगा, अब बाद में क्या हो जाएगा, भूल ही जाएगा। हम लोगों का ज्ञान क्या होता है, थोड़े समय तक जब तक प्रेमपुरी में रहते हैं न, तब तक तो बहुत बढ़िया स्मरण रहता है, और जैसे प्रेमपुरी से बाहर जाते हैं थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, सबका नहीं कह रहा हूं, सबका नहीं हम कह सकते इतना कैसे, क्योंकि संसार में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई नियम सबके लिए लागू हो, सब जगह अपवाद भी हैं, तो सब किसी का भूल जाता है, और कोई तो हर पल हर अवस्था में, मौत का पल आवे उस अवस्था में भी वो छोड़े अपने आप को, वह कभी भूल का नहीं है। तो ज्ञान के, अब ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान हो गया है, आप लोगों को भी हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक श्लोक के माध्यम से हम थोड़ा पीछे जाते हैं, क्योंकि सिंहावलोकन किए बिना आपको पीछे का याद नहीं आएगा। कहते देखो अपने स्वरूप को, अपने आप को अंत अदृष्टे, जब तक हम देखेंगे नहीं, किसको, अपने स्वरूप को जब तक हम जानेंगे नहीं, तो उसी स्वरूप के भीतर ही, उसी स्वरूप के ऊपर ही, पास में ही यह सारा जगत प्रकट हो जाता है। भाई स्वप्न में हम जब जाते हैं तो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, नहीं जाते, स्वप्न में जब हम जाते हैं तो तुरंत हम प्रेमपुरी में कथा कर रहे हैं, एक क्या करते हैं, भूल जाते हैं, हम पहुंच जाते हैं कहां, हरिद्वार में। और जैसे हरिद्वार पहुंचते हैं तो हरिद्वार का सारा संसार पैदा करने में आपको कितना देर लगता है, गंगा जी को बहाने में, पूरा आश्रम को तैयार करने में, वहां की सारी पब्लिक को पैदा करने में, मनसा देवी, चंडी देवी, सब कुछ पैदा करने में कितनी देर लगती है, वह सारा का सारा संसार किसके पास है? आपके ही ऊपर, आपके पास ही सब प्रकट हो जाता है, क्योंकि आप जहां है ना उसी के आजू बाजू संसार दिखता है। लेकिन कब दिखता है, अपने आप को अदृष्टि नहीं जानने से। आज जैसे ही अपने आप को जानते हो, जैसे अपने आप को जाने, तो वह संसार वहीं विलीन हो जाता है। कहां से पैदा होता है, वहीं क्या हो जाता है, विलीन स्वरूप में लौटने से ही वह संसार, स्वप्न का संसार क्या होता है, गायब होता है, नहीं होता है। तो दृष्टे अस्मिन, जिसको देख लो, एक बार भी देख लिया तो ये क्वापी, वह असद रूप संसार कहां गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। जैसे लेकिन यहां आश्चर्य है कि हम एक स्वप्न से जगते हैं और दूसरे स्वप्न में एक शरीर से मैं बुद्धि हटाता हूं और दूसरे शरीर में मैं बुद्धि कर लेता हूं। कभी आप सपने में सोए हो कि नहीं सोए हो, सपने में भी सो करके जगना शुरू कर देते हैं, जगते हैं है? ऐसे हम वहां से एक सपने से जाते हैं और एक दूसरे सपने में आ जाते हैं। एक मिथ्या शरीर से मैं बुद्धि हटाता हूं और दूसरी मिथ्या शरीर में मैं बुद्धि करके एक सपने को तोड़ता हूं और दूसरा सपना देखना शुरू कर देता हूं। मैं कभी जगता ही नहीं हूं। जगना क्या है, अपने आप को जानना, इस शरीर से मैं बुद्धि न करना, यही जगना है। इस शरीर में मैं बुद्धि न करना, यही क्या है, जगना है। कि शरीर नहीं, बल्कि इस शरीर में मैं बुद्धि करने से शरीर क्या हो रहा है, चेतन सा दिख रहा है। ऐसे जिन जिन शरीरों में मेरी मैं बुद्धि हो रही है, उन उन शरीरों में मैं दिख रहा हूं। थोड़ा सा विचार करने की अवस्था है कि हम सोए हैं, कहां सोए हैं, स्वर्ण प्रेमपुरी में, और सपना कहां देख रहे हैं, हरिद्वार में। अब बताओ आपकी सत्ता एक जगह है कि दो जगह, ना मेरे को बता दो, चलो हा? आप यहां हो कि नहीं हो, जहां सोए हो वहां हो या नहीं हो, वहां नहीं है या नहीं कर सकते, वहां भी हैं, और जहां सपना देख रहे हो वहां भी है। बल्कि सपना जहां देख रहे हैं वहां गंगा स्नान करने गए थे, बहुत ठंडी लग रही थी, महाराज जी कंबल ले आओ, और यहां एसी चला के सोए हुए हो, और हरिद्वार में गंगा स्नान के बाद क्या कर रहे हो, आग ताप रहे हो। बल्कि जहां विशेष बुद्धि है वहां का सुख दुख मान अपमान सब कुछ अनुभव हो रहा है। इस शरीर में भी आप हो, लेकिन इस शरीर में सामान्य रूप से हो, तो सामान्य रूप से होने से इसमें सुख दुख मान अपमान है। तो एक काल में आप दो दो शरीरों को सत्ता देते हो, नहीं देते, मेरे को बता दो। एक ही काल में आप दो जगह रहते हो, नहीं रहते हो। अच्छा आप दो, अभी दो जगह तो पहुंच गए ना, अभी आप क्या मानते थे, बस इसी शरीर में हूं, अभी क्या मानते थे, बस इसी शरीर में हूं, अब आप क्या मान बैठे, इस शरीर में नहीं, इसके अलावा किसी और भी शरीर में हूं। मतलब समझ लेना, मान लो अभी मेरी उम्र 50 साल है, स्वप्न में 20 साल का हो करके क्या कर रहा हूं, हाई स्कूल का पेपर दे रहा हूं, तो उस 20 साल के भी शरीर में मैं हूं, और 50 साल के भी शरीर में मैं हूं, और दोनों को सत्ता दे रहा हूं, एक में सामान्य रूप से हूं और दूसरे में क्या हूं, विशेष रूप से हूं, लेकिन दोनों जगह आप हो नहीं हो, पक्का निश्चय हो गया। अब देखना स्वप्न में और जितना संसार है वह सब भी किसके ऊपर टिके हुए हैं, आपके ऊपर, उसमें भी आप हो या नहीं हो। जो स्वप्न में और भी दुनिया दिख रही है उन सब में आप थे नहीं थे, क्योंकि वह आप पे ही टिके थे, आपके पास ही, आपके ऊपर ही वो सब थे, वह आपसे पृथक उनकी सत्ता थी नहीं, तो उन सब में आप थे नहीं थे, तो आप एक जगह हो कि सब में हो। तो इस संसार में भी हम कहां हैं, सबके शरीरों में ही विद्यमान हैं, इसलिए हम एक ही शरीर में नहीं, मैं क्या हूं, व्यापक हूं, मेरी ही सत्ता पा करके हर अंतःकरण अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन सब किसके अधीन है, मेरी ही सत्ता के अधीन है। यदि मेरी सत्ता न मिले तो उन सबकी भी सत्ता प्रतीत होने वाली है ही नहीं। क्या है भाई, देखो अब क्या बताएं, एक ट्रेन जाती है, ट्रेन ट्रेन जा रही ना, तो ट्रेन के ऊपर एक तार है बिजली का, अतः ट्रेन जैसे जैसे जाती है तो करंट भी जाती है, क्या करंट नहीं जा रही ट्रेन के गति के साथ है। जहां जहां ट्रेन जाती है उसको करंट मिलता जाता है, ऐसे जहां जहां यह शरीर अथवा अंतःकरण जाता है वहां वहां मेरी मुझ आत्मा की शक्ति को वह पाता चला जाता है। लेकिन वो भी उदाहरण थोड़ा परिच्छिन्न है, कैसा उदाहरण है परिच्छिन्न, थोड़ा व्यापक उदाहरण ले लो, एक सोलर एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, सोलर एनर्जी। अब देखो कमरे में यदि कैलकुलेटर चलाओगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, जबकि सूर्य ऐसा तो नहीं कि धूप में जाकर करना पड़ेगा, क्योंकि यहां भी सूर्य की ऊर्जा सामान्य रूप से यहां भी है, थोड़ा काम करेगा। यदि मान लो आपकी कार भी सोलर से चलने लगे, वैसे चल रही है, कहीं खोज हो रही है कि ऐसा होगा कल पेट्रोल कम हो जाएगा या समाप्त तो हो जाएगा, तो कोई न कोई सब्सिट्यूट तो चाहिए कि नहीं चाहिए, किसके लिए, आपकी गाड़ियों के लिए, इतनी गाड़ियां क्या होंगी। तो अब योजना चल रही है कि सोलर के माध्यम से हर गाड़ियों की छत पे क्या रखें, एक सोलर वो रखें, उससे एनर्जी लेकर के हमारी गाड़ी क्या करें, तो जहां अब उसको एनर्जी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो जहां जहां जाएगी गाड़ी वहां वहां सूर्य इसमें क्या होता जाएगा, प्रतिबिंबित तो होता जाएगा, उससे उसको एनर्जी मिलती जाएगी। तो वही जैसे सोलर एनर्जी व्यापक है, उसके भीतर चाहे गाड़ी में लेकर के गाड़ी गति कर रही है, कैलकुलेटर अपना काम कर रहा है, सोलर कुकर में रोटी वो भोजन पक रहा है, कहीं पानी गर्म हो रहा है, एनर्जी एक ही है, उसमें कितने काम व्यक्ति कर रहा है। उसी प्रकार से मैं वह आत्मा एक ही सत्ता हूं, उसी आत्मा के ऊपर जितने अंतःकरण मिल जाते हैं वह अंतःकरण सारे अपने अपने काम करते रहते हैं। तो अपने आप को आत्मा जान लो, या आत्म रूप से अपने आप को व्यापक रूप से अनुभव कर लिए, तो संसार की तरंगे उठती रहें या बिगड़ती रहें उससे उस आत्मा का कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। फिर एक खुराफात नहीं रहता, अच्छा हो बुरा हो ये करे, एक त्रिपुरा रहस्य ग्रंथ है, इसमें आपने पढ़ा भी होगा, कभी सुना भी होगा, कि तुम एक मन को बस में कर भी लिया, क्या एक मन को बस में कर भी लिया, लेकिन दुनिया में बिना बस में किए हुए मन भी तो तेरी सत्ता से काम कर रहे हैं, तो वह मन बस में हो अथवा बस में न हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका जगत उसी क्षण गायब हो जाता है। उदाहरण के तौर पे पर्दा है, पर्दे का रंग कैसा होता है, सफेद, कैसा होता है, फिल्म का पर्दा, फिल्म वाला जो पर्दा होता है उसका रंग कैसा होता है, सफेद, आपने देखा है इसलिए बता रहे हो। अब कभी किसी बच्चे ने जब भी गया, फिल्म शुरू हो गई थी, तो क्या वह भूल करके भी सफेद की कल्पना कर सकता है क्या, क्योंकि जब भी देखेगा उसको कोई न कोई रंग ही दिखेगा, सफेद तो कभी उसको देखा ही नहीं, लेकिन एक बार सारे रंगों को हटा दिया, एक बार पर्दे के स्वरूप का ज्ञान हो गया, और फिर पर्दे पे आग लगे तो, बारिश होवे तो, तूफान आवे तो, आपको कोई चिंता होगी क्या। ऐसे एक बार विषय रहित चित्त को जान लिया, अंतःकरण को जान लिया, आत्मा को जान लिया, तो उस आत्मा के ऊपर मन में कोई विचार आवे, तूफान आवे न आवे, ये निश्चय हो जाता है कि अब उस आत्मा का कोई बाल बांका होने वाला है ही नहीं। इस रूप में जो अपने आप को जान लिया उसके भीतर का यह संसार न जाने कहां गायब हो जाता है, विलीयते, संसार क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, उसको बाहर भीतर पूर्ण परमानंद में वह डूब जाता है। अब उसको वहां खोलने की भी आवश्यकता नहीं रहती है, आंख बंद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी तो हमें उस परमात्मा को देखने के लिए क्या करना पड़ता है, आंख बंद करना पड़ता, अनुभव करना पड़ता है। बाद में आंख खुली है तो भी, बंद है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बंद भी करके क्या देखना है, अब खुली होकर क्या नहीं दिख रहा है बताओ। सब रूपों में सत्ता किसकी है, उसी में ही डूब जाता है, उसके अलावा दूसरी कोई सत्ता रहती नहीं। इसके लिए उदाहरण मैंने दिया था, याद होगा, युक्ति समुद्र का। समुद्र में क्या भरा है, सब बोलते हैं जल ही है, लेकिन जल ही है क्या, बहुत कुछ है। लेकिन अब उस जो कुछ है, हजारों लाखों मछलियों की जाति, वृक्ष भी समुद्र में है, समुद्र के भीतर जलीय वृक्ष भी हैं, कई बड़े बड़े वृक्ष, जलीय वृक्ष जो है, लेकिन उस जल के आगे पीछे, उस नहीं, उस वस्तु के आगे पीछे, उस वस्तु में क्या है, जल ही एक जल कलावा है। ते समुद्र पृथ्वी सहित सब के सब उस चैतन्य में क्या है, ओतः प्रोत है। किसमें, उस चैतन्य में ओतः प्रोत है। तो वह आभ्यंतर पूर्ण, वह चैतन्य कैसा है, बाहर और भीतर से पूर्ण है, परमानंद रूप। समुद्र में जो व्यक्ति एकदम डूब गया है उस मछली की तरह, जैसे घड़ा डूबा हुआ हो जल में, तो जल उस घड़े में पूरी तरह समा जाता है, बाहर भीतर और घड़े के छेदों के बीच में भी जल समा जाता है, ऐसे वह आनंद में पूरी तरह से क्या करता है, डूब जाता है। वह ब्रह्म कैसा है बताए, पूर्ण से भी पूर्ण है। ब्रह्म कैसा है, पूर्णात पूर्ण तरे, पर से भी पर है, कार्य से भी, कार्य कारण दोनों से भी पर है। अज्ञात पार है, जिसकी सीमा का कोई ज्ञान है ही नहीं, जो जिसमें कोई विक्षेप नहीं है, एकदम बीची तरंग आदि से रहित है। कहते हैं करोड़ों सूर्य के समान जो प्रकाशित हो रहा है, ऐसे में जिसका चित्त डूब गया है, उसके लिए न तुम रहते हो, न मैं रहता है, न यह सारा जगत रहता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। एक सत्ता कौन सी रहती है, ब्रह्म सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता रहती नहीं। दिखता रहे, जैसे एक दर्पण है, दर्पण में तस्वीर है प्रतिबिंबित, उस प्रतिबिंबित तस्वीर के बाहर भीतर सब शीशा ही शीशा है, शीशे के सिवा दूसरी, शीशे से बाहर तस्वीर दिखती रही है लेकिन वास्तव में शीशे से पृथक है, उसकी सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही ये संसार ब्रह्म से अलग दिखता हुआ भी ब्रह्म से पृथक, इसकी सत्ता है ही नहीं। और यह जगत भी ब्रह्म ही रूप हो जाएगा, ब्रह्म के सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता रहेगी नहीं। ये सब ज्ञान का स्वरूप है। फिर आपको यही लगेगा, ये सब कहां गायब हो गए, कौन ये संसार, क्वगतम कहां चला गया, केनवान इतम इस संसार को कौन उठा ले गया, कुछ लीनम इदम जगत, यह संसार कहां लय हो गया, अधुना एव माया दृष्टम, अभी अभी तो सारा संसार मेरे सामने दिखाई दे रहा था, नास्तिकीम अब तो संसार है ही नहीं, महद अद्भुतम, ये तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। संसार क्या है, यही सुख दुख कर्ता भोक्ता का नाम क्या है, संसार है। और जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो न कुछ करने वाला बना बचा, न कोई भोगने वाला बचा, न कहीं सुख रहा न कहीं दुख रहा, एक ही सत्ता एक ही तत्व तो सब जगह क्या दिख रही है, ओतः प्रोत दिख रही है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति लय हो जाए तो इसका नाम है ज्ञान। अब ये ज्ञान तो आप सबको हो ही गया है नहीं, इतना ज्ञान तो हो ही गया है, लेकिन अब यह ज्ञान टिके कैसे, ध्यान देना, यह ज्ञान है तो लेकिन टिकता है क्या, नहीं टिक पाता है। तो टिकेगा कैसे, जब आपके जीवन में भक्ति होगी तभी टिकेगा, नहीं तो टिकने वाला है ही नहीं। क्योंकि देखना, हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में कुछ कुछ प्रतिबंध हैं, क्या है, हर एक व्यक्ति, क्योंकि भाई देखो हम कथा तो सबको एक जैसे सुना रहे हैं, नहीं सुनाते, जब बोलते हैं तो किसी को ज्यादा सुनवाते हैं, किसी को कम सुनवाते हैं, यहाँ तीनों ने हर कोने में क्या लगाए हैं, स्पीकर ऐसे लगाए हैं कि सबको एक जैसी ही आवाज सुनाई देवे। लेकिन किसी व्यक्ति को वह ज्ञान है, एक बार सुनता है और सुनकर के इतना आनंदित हो जाता कुछ कहना नहीं। अब कोई व्यक्ति सुनते सुनते कई बोलते हैं, महाराज जी जितनी आपकी उम्र हो गई है ना उतने साल मुझे कथा सुनते हो गए हैं, आप हमें क्या सुनाओगे बता दो। सही, हमसे बोलते हैं कई लोग ऐसा बोलते हैं, जितनी उम्र हो गई उतनी साल हमें कथा सुनते हो गए, फिर भी अंदर की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो कोई न कोई प्रतिबंध तो है ही नहीं, बताओ मानना पड़ेगा। अरे आप ही देख लो, आपने देखा होगा अंग्रेजी दवाई जो बहुत ज्यादा खाता है ना उसको उसका प्रभाव कम पड़ता है। अभी हम एक नींद की गोली खा लेना एल्प्राक्स तो हो सकता है यही बेहोश न हो जाए, और कई लोग चार चार गोली खाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं उनको उसको पचाने की क्या हो गई है क्षमता हो गई, ताकत आ गई है। ऐसे पेन किलर वगैरह भी हम लोग तो आधा कहीं दर्द हो आधा खा ले में बस पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन जिसको रोज पेन किलर ही लेता है उसको आधा एक से कोई फर्क पड़ता नहीं, उसको कितनी चाहिए 2-3 चाहिए तब जाकर के उसका दर्द कंट्रोल में होता है, क्योंकि हमें उसका एक क्या बन गया है वो बन गया, उसको पचाने की क्षमता हो गई है। तो प्रतिबंधो वर्तमान हर एक व्यक्ति के अंतःकरण में कोई न कोई क्या है प्रतिबंधक है, ज्ञान का प्रतिबंधक है, जो ज्ञान होने से आपको क्या करता है रोकता है। जबकि हुआ तो है ज्ञान, हम नहीं कहते प्रेम प्रेम में आने वाला व्यक्ति अज्ञानी तो है ही नहीं, हाँ ये मैं कह सकता हूं परोक्ष ज्ञानी है। कौन सा ज्ञानी? परोक्ष ज्ञानी है, अपरोक्ष नहीं हो पा रहा है। तो इस अपरोक्ष होने में कोई न कोई क्या है प्रतिबंधक है, वह प्रतिबंधक क्या है? पहला है विषयाशक्ति लक्षणम, पहली है विषयों की जो आसक्ति है ना वो पहला प्रतिबंधक है। अरे तो है ही, देखो भले हम लाख सत्संग सुने, लाख ईश्वर की महत्व को बुद्धि में यहां धारण करते हैं, लेकिन फिर भी जगत की महत्व अभी बुद्धि से हटती नहीं है। सत्संग हम लोगों की भी नहीं हटती, औरों की बात क्या बताएं। कभी न कभी धन पे हम जानते हैं सुख धन नहीं देता, सुख परिवार नहीं देता है कि देता है, सुख आपका अपना प्रारब्ध देता है। यदि प्रारब्ध में सुख लिखा है तो दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाओ वहां भी समय से दूध मिल जाएगा, समय से सेवा करने वाले भी मिल जाएंगे। यदि प्रारब्ध में सुख नहीं है तो एक बीवी नहीं हजार बीवियां हो जाएंगी, लाख बच्चे हो जाएंगे, लेकिन मुंह में पानी डालने वाला ना कोई नहीं रहेगा। और आपने देखा भी है दशरथ के यहां, राजा दशरथ के यहां कितनी पत्नियां? 3-4। अरे भाई आप लोग तो ना भूलो, 3 पचरानियां थी और 300 पत्नियां, ऐसा वाल्मीकि में आता है। 3 तो जिसे रावण की पचरानी तो कौन थी? मंदोदरी, अरानिया हजारों किसके यहां? रावण के यहां। ऐसे दशरथ के यहां 3 तो क्या थी? पचरानियां अरानिया 300 कहते हैं। लेकिन जिस समय दशरथ महाराज मरे हैं तो रात में कितने बजे मर गए हैं उस डेट को लिखने, उस टाइम को लिखने वाला कोई नहीं था उनके पास। कब मर गए उनके मुंह में कोई गंगा जल डालने वाला नहीं था, सच बताऊं ऐसे मरे हैं। सुबह सुबह राजाओं को जगाने के लिए बंदी जन आते हैं ना, बगैर संगीत गाते हैं, राजा आपके दर्शन करने के लिए सूर्य इंतजार कर रहा है, हवाएं बह रही हैं, हमने तारे इंतजार कर रहे हैं, आप बाहर निकलिए, ऐसी स्तुति किया करते थे। अब बेचारे सुमंत जी महाराज मंत्री आगे फूलमाला लेकर के खड़े हैं, अब राजा आएंगे फूलमाला चढ़ाएंगे, एक घंटा स्तुति करते रह गए कोई आए ही नहीं। अब कैकेयी थोड़ा तेज तर्रार थी तो कैकेयी की महल में जाने की हिम्मत तो हुई नहीं, तो सुमंत महाराज कौशल्या के महल में गए कि देखो तो आखिर बात क्या है, रंगमास में सब नहीं घुस सकते ना। तो कौशल्या देवी गई वहां दशरथ के महल में तो पता लगा सियावर रामचंद्र की कब जय हुए थे, गंगा जल मुंह में डालने वाला भी, जबकि इतने बड़े राजा थे, कौन थे? चक्रवर्ती। सम्राट थे, दो चार नौकर बीवियां नहीं थी, नौकर चाकर तो हो सकते थे, लेकिन अब सोचना जल डालने वाला कोई राजा होता है क्या? राजा की सेवा हो सकती क्या? नौकर नहीं करता, बीवी नहीं करती, धन नहीं करता, कौन कराता है? आपका प्रारब्ध में है, लेकिन फिर भी इस प्रारब्ध पे भरोसा होता है क्या? सही बताऊं, नहीं होता भरोसा। विषयों का भरोसा दिल से हटता ही नहीं है। इतना हम सुन लेते हैं, इतना हम अनुभव कर लिए हैं कि विषय सुख रूप नहीं है, लेकिन फिर भी विषय में सुख है, ये बुद्धि पूरी तरह से निकलती नहीं। कहीं न कहीं विषयों में सुख बुद्धि सूक्ष्म रूप से पड़ी हुई है। सूक्ष्म रूप से क्या है? पड़ी है। इसलिए विषयासक्त लक्षणम पहला एक अवरोधक है। इतना सुनने के बावजूद भी हमारी आसक्ति, एक कहावत है, गिद्ध कितनी ही ऊंचाई तो उड़ेगा, उसकी दृष्टि कहां रहती है? सड़े हुए मांस के लोथड़े पे रहेंगे। ऐसा हम कितनी भी ऊंचाई पे उठेंगे, लेकिन हमारी दृष्टि कहां रहती है? इस संसार के तुच्छ विषय भोगों में। एक पहला अवरोध है। दूसरा अवरोध है प्रज्ञा मानदम। क्या अवरोध है? प्रज्ञा मानदम, बुद्धि की थोड़ी मंदता होना। आप लोग कह भी दे रहे महाराज जी इतनी ऊंची बातें हमारी समझ में, शुद्ध वेदांत होवे, रस्सी घट पट मच चलाता रहे, घट अवक्षी नाकाश और जल क्या है, जलावक्षिण आकाश, जला प्रतिबिंब आकाश, महाआकाश और फिर घटाकाश पट्टाकाश, कितने आकाश बता देते हो, आदमी क्या हो जाता है। एक तो ईसा था, हरियाणवी जाट, आश्रम में रहता था, वो 10 साल कथा सुना और 10 साल बाद महाराज जी रज्जू क्या होती है, 10 साल के बाद रज्जू क्या होती है, उसको रज्जू का मतलब ही नहीं मालूम चला। तो कहते हैं बुद्धि की क्या है, मंदता भी है। एक ज्ञान होने में क्या बन जाती है, अवरोधक बन जाती है। बुद्धि की मंदता वाले के लिए भक्ति तो बहुत बढ़िया है, भक्ति वो कर लेता है ठीक ना, क्योंकि उसके अंदर श्रद्धा जल्दी पैदा हो जाती है। अब भक्ति के बाद फिर ज्ञान, बुद्धि उसकी तीक्ष्ण हो जाती है और फिर वो ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। भक्ति पहले करेगा फिर क्या करेगा, ज्ञान प्राप्त करके फिर वो कर लेगा। तीसरा है, हम तो बड़े विद्वान हैं, मुंबई वाले लोग हैं, हमारे अंदर बुद्धि की ममता नहीं है। तो ज्यादा विद्वान हो गया ना तो भी बड़ा खतरनाक है, कुतर्कश्च, वह क्या करना शुरू कर देगा, कुतर्क करना शुरू कर देगा। यह बुद्धि की बहुत बड़ी विशेषता है, हमेशा कुतर्क ही करती है। इसलिए कुतर्क भी आपके ज्ञान का सबसे बड़ा क्या है, अवरोधक है, बहुत बड़ा अवरोधक है। और चौथा बहुत बड़ा है, विपर्य दुराग्रह है। जो हमारा दुराग्रह है, कौन सा दुराग्रह, उल्टी बुद्धि रूप दुराग्रह। हम जानते हैं, वही कहते ना, पंचों की राय सरलाखों पे, लेकिन म्यारो खूंटा वहीं गड़े हैं। आपकी बात जजमेंट सब ठीक है, लेकिन जो मैं कहता हूं ना, मैं उतने से अधिक हटूंगा ही नहीं। इसको आज आप लोगों ने देख लिया है, हरियाणा महाराष्ट्र में तो चली रहा ना, शिवसेना और बीजेपी के संघर्ष में मात्र लड़ाई कितने सीटों की हो रही थी, 2 ही तो हो रही थी और क्या। वो 10 दे रहे थे, वो क्या कर रहे थे, 12 मांग रहे थे, लेकिन न वो हटे रहे न वो होट रहे हैं। आपकी बात ठीक है, मेरी औकात कम है, मेरी स्थिति कम है, मैंने चुनाव में भी देख लिया, लेकिन उससे मैं नीचे हटने वाला हूं ही नहीं। तो ये हमारा क्या था, एक दुराग्रह है। जैसे उसमें दुराग्रह है, हम उस आग्रह को छोड़ेंगे नहीं। जब नहीं छोड़ना तो बात है क्या करना, हम तो कहते हैं एक टुक माना कर दो, हम लोग तो कहते हैं हमारा तो अपना एक सिद्धांत है, आपसे प्रेम है तो प्रेम है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए यदि प्रेम है तो उसके लिए मुझे कितना भी कष्ट निभाना पड़ेगा, उस कष्ट को मैं निभा करके कितना भी अपना बलिदान देना पड़ेगा, उस बलिदान दे करके भी मैं उस प्रेम को क्या रखूंगा, बरकरार रखूंगा। और जिसके अंदर बलिदान की वृत्ति नहीं है, वह प्रेम नहीं, आडंबर है, दिखावा है। सही बताओ, प्रेम में मांग नहीं होती है, प्रेम में हमेशा देना होता है। जहां मांग है ना, वहां प्रेम हो ही नहीं सकता है। प्रेम हमेशा देना सिखाता है, लेना कभी नहीं सिखाता। चलो जो भी है, तो तीसरा कौन सा लक्षण है, विपर्य रूपी दुराग्रह, उल्टी बुद्धि। भले आप कहो ब्रह्म है लेकिन मैं तो माने बैठा हूं, कौन हूं, शरीर ही हूं, शरीर से अलग हम इस बुद्धि से हट ही नहीं पाते, तो इसका नाम है क्या है, विपरीत रूपी दुराग्रह। अब इन चारों दोषों को, प्रतिबंधकों को हटाएंगे तभी तो ज्ञान होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसके पहले ज्ञान कैसे होगा? तो हटाने का उपाय क्या है बोलो भाई? विषयाशक्ति को हटाने के लिए प्रौढ़ वैराग्य चाहिए। क्या चाहिए? प्रौढ़ वैराग्य। अभी वैराग्य आता है लेकिन कौन सा? शमशानी वैराग्य। कौन सा वैराग्य आता है? शमशानी वैराग्य। किसी ने कुछ बोल दिया, बड़ा दुख हो जाता है। अब तुरंत सम्मान मिल गया तो तुरंत क्या हो जाता है, वह दुख भी क्या हो जाता है, भूल जाता है। तो अभी शमशानी वैराग्य क्या होना चाहिए? प्रौढ़ वैराग्य। मास्कृत्य बीत तीक्षण सुखी भव। प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर के व्यक्ति संसार के विषयों की तीक्षणाओं को क्या कर देवे, छोड़ देवे और छोड़ करके सुखी हो जाए। ये पहला साधन है। वैराग्य की उत्कृष्टता चाहिए किसमें? विषयाशक्ति को हटाने के लिए। नहीं तो विषय आपके जीवन में कब घर कर लेंगे इसका कोई ठिकाना है ही नहीं। उसे विषयों से संबंध भी कम से कम रखना चाहिए, ये भी बता दूं, बड़ा मुश्किल काम है। एक क्या बताया था मैंने, भगवान राम ने छिप करके मारा है किसको? बाली को। आप लोग कहते ना छिप के क्यों मारा? नहीं, बाली है भोग का प्रतीक। बाली किसका प्रतीक है? भोग के सामने बड़ा से बड़ा बलवान भी जाएगा तो क्या बन जाएगा? कमजोर बन जाएगा। ये विशेषता है। बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी यदि किसी भी भोग के सामने जाए, किसी वेश्या के सामने जाता है तो क्या कहता है, मैं तुम्हारे चरणों का दास हूं। रावण जैसा व्यक्ति सीता के चरणों में लौटने के लिए तैयार हो रहा है, जिसने सारे संसार को क्या किया है, जीत लिया। इसलिए बाली के सामने कोई जाता है ना तो लड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसके सामने कौन लड़ सकता है। ठीक है, यदि बाली को जीतना है, बाली माने बाली को नहीं, भोग को जीतना है, तो भोग का सामना करके भोग को जीतना थोड़ा सा साधक के लिए क्या है, साधक के लिए कठिन है। इसलिए भोग से दूर रह करके ही भोग को शांत कर सकते हो। यदि भोग के सामने तुम्हें जाना ही पड़े तो सुग्रीव बन के जाना। क्या बन के जाना? सुग्रीव। सुग्रीव कैसे गया था? तेरा सुग्रीव बाली से युद्ध करने गया तो भगवान ने क्या कहा, महाराज मैं पहचान नहीं पाया भाई। नहीं, वहां से लात खा करके वापस आ गया तो बड़ी शिकायत करता है राम से कि हे प्रभु, यदि मुझे मरवाना ही है तो उस कुटिल भाई से क्यों मरवा रहे हो? ठीक है ना, अपने हाथों से मुझे मार करके मेरा कल्याण कर दो, आप बेमौत मेरे को मरवाने के लिए भेज दिया है। तो भगवान राम ने कहा, तुम दोनों भाइयों का चेहरा एक जैसे ही था तो मैंने सोचा कि तीर चलाऊं और कहीं बाली की जगह सुग्रीव को लग गया तो मित्र की हत्या का दोष लगेगा, इसलिए मैंने बाण चलाया नहीं। अब बताओ, भगवान नहीं पहचानेंगे तो दुनिया में कौन पहचानेगा? बताओ, बाली और सुग्रीव में, यह बाली है यह सुग्रीव है, इसको भगवान नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा है? भगवान सब जानते हैं, लीला उला नहीं, भगवान लीला भी करते हैं तो कुछ सिखाने के लिए करते हैं। वहां क्या सिखाना है? भगवान अपने आप को क्या ज्ञानी सिद्ध कर रहे हैं? क्या मैं ज्ञानी हूं? भगवान ने कहा, बेटा माला पहन के जा और फिर युद्ध करने के लिए जा और फिर तू पक्का जीत जाएगा। किसको? बाली को जीत जाएगा। हम भी जब ये माला पहन के जाते हैं ना, अथवा ये क्या बोलते हैं, एक वस्त्र पहन के जाते हैं, यदि किसी भोग के सामने जाएंगे तो हम भोग को नहीं भोग सकते। आप रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए आ जाओ, कोई आपको मना करेगा क्या? बोलो, टोकने वाला है क्या? हम रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए आ जाएं, अब प्रेमपुरी वाले यहां सत्संग सुन के जा रहे होंगे, क्या कहेंगे? हम खा सकते हैं क्या? आप सोचो है? आप किसी भी अवस्था में किसी के साथ जा सकते हो। हमारे पास तो कोई पीछे पीछे वो भी रहे तो हमें डर लगता है कि कोई मतलब देखे क्या, मतलब कोई गलत न समझ, जबकि हमारे साथ है ही नहीं। आप तो कैसे भी बैठ के जाओ, कैसे भी रहो, आपको कोई बोलने वाला है क्या? तो भाई देखो, यदि भोगों के सामने जाना हो तो चंदन लगा के जाना, माला पहन के जाना, ठीक है ना, थोड़ा क्या करना, लाल कपड़ा भी पहन लेना, तो आप वहां जा ही नहीं सकते हो, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, हटना ही पड़ेगा। तो ये भगवान सिखाते हैं किसको, हमारे जैसे व्यक्तियों को। और आप लोग नाराज भले हो जाओ लेकिन एक बात स्वाभाविक है, पहले जब विवाह होता था ना तो ये सब क्या थे, ये थे बिछिया थी, ये सब क्या थे, लाइसेंस थे। अब आप इस अवस्था में रहोगे तो न आपको कोई गलत देखेगा, और आपके मन में भी कभी विचार उठा तो तुरंत याद आ जाएगा, क्या मैं तो शादीशुदा हूं। और आज हम लोगों ने सब इनको क्या किया है, त्याग दिया है, तो हमारे मन में भी कभी गलत विचार उठ जाते हैं और दूसरा भी आपके बारे में गलत सोच लेता था। ये बहुत बड़ा आलंबन है, सच बता रहा हूं मैं, औरों को क्या बताऊं, अपने बताऊं। जब मैं नौकरी कर रहा था तो मैंने सोचा था पहले 50 साल तक थोड़ा लोक सेवा करूंगा, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, स्कूल खोलूंगा, 50 के बाद संन्यास लूंगा, ऐसा मेरे मन में संकल्प था। लेकिन इतने लोग पीछे पड़ गए, ऑफिस में लोग आना शुरू कर दिए, किस लिए जानते हैं, नहीं अरे लड़की वाले ऑफिस में देखने के लिए आना शुरू कर दिए, जीना हराम हो गया। मैं इतना मना कर दिया, नहीं करना नहीं करना नहीं करना, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा, दस तरह के लालच देना शुरू कर दे। यूपी में तो जानते हो खुद चलता है क्या, डाउरी दहेज, वो लड़की डॉक्टर है, वो लड़की प्रिंसिपल है, वो लड़की गोरी है, वो का। अरे भाई जब हमें करना ही नहीं तो फल क्या गिनना है, कौन आम कितना फल देता है, हमें क्या करना है। लेकिन जब कोई नहीं माना, हमने कहा भाई इससे बचने का तरीका क्या है, एक सबसे बढ़िया एक कपड़ा पहन ले, इसका कपड़ा पहनने के बाद कोई नहीं आया प्रपोजल देने के लिए, समझ लेना। तो बताओ इस वस्त्र में इतनी ताकत है कि नहीं, ताकत है बताओ, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कुछ आपको गलत बोल देवे। अरे आपने गलत बोल भी दिया तो दूसरा व्यक्ति तुरंत आपको क्या करेगा, रोक देगा, अरे महाराज जी आप ऐसा बोलते, आपको ऐसा बोलना शोभा, अरे भले अभी हम गुस्सा कर देवे ना तो भी लोग टोक देते हैं, महाराज जी आप तो महात्मा हो, आप क्यों गुस्सा करते हो, जबकि भले गुस्सा करना मेरा कहीं न कहीं क्या था, आजीव था, जुनून था, किसी को शिक्षा देने के लिए गुस्सा किया, लेकिन तब भी लोग कहीं न कहीं हमें क्या करते हैं। तो यदि संसार में जाना पड़े तो इनके साथ जाओगे ना तो संसार में घुसने की इच्छा होगी नहीं, सही बताऊं, होटल में खाने की हम लोग नहीं हिम्मत कर पाते, होटल में रुकने की हिम्मत नहीं कर पाते, आश्रम में भले बरामदे में सो जाऊंगा लेकिन होटल में रुकना एक बार बड़ा बोझ लगता है। अभी तो मैं तो रुके ही नहीं, और आजकल तो है समरस को नहीं, कुछ दोष गुसाई वाला चल गया है, समर्थशाली व्यक्ति कहां भी रहे कैसे भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जन सामान्य व्यक्ति तो उस विषय से क्या कर सकता है, बच ही सकता है। तो यदि विषय भोगों से बचना है तो उस विषय भोगों से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर रहने का प्रयास करना। और जब समझना हम पूरी तरह से मजबूत हो गए हैं, अब विषयों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तब आप चले जाना, फिर आपको कोई मनाही है ही नहीं फिर आपके लिए। लेकिन जब तक अभी थोड़ा वो है तब तक अपने आप क्या करना चाहिए। और एक हमें गीता जी का बहुत बढ़िया श्लोक आता है, बहुत अच्छा श्लोक है, आप लोगों ने सुना भी होगा, गीता जी का पांचवा अध्याय, कौन सा पांचवा अध्याय, कौन सा श्लोक है, शक्नोति, 23वां श्लोक, शक्नोति है वह सोढुम प्राक शरीर विमोक्षात काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। बहुत बढ़िया, इस बार मैंने गीता जी कहीं लिया तो हमें यही श्लोक काम का निकला, कहते देखो मनुष्य शरीर है तो भाई काम का भी वेग अंतःकरण में रहेगा नहीं रहेगा, अब गुस्सा भी आएगा ही आएगा, चाहे बाबा हो चाहे जो भी हो, जड़ तो हो नहीं गया, अंतःकरण है तो क्या आएगा, गुस्सा भी आएगा, लोभ भी आएगा, काम भी आएगा नहीं आएगा, लेकिन शक्नोति इह एव अस्मिन एव जन्मनि अस्मिन एव शरीरे, शक्नोति माने समर्थ होता है, कौन यह सोढुम जो सहने में समर्थ हो जाता है, कब तक, प्राक शरीर विमोक्षात, पहले के कर्मों से जो शरीर मिला हुआ है इस शरीर के मरने के पहले तक जो सहने में समर्थ हो जाता है। क्या सहने में समर्थ हो जाए? काम क्रोधोद्भवम, काम और क्रोध का जो उद्भव का जो वेग है, चाहे काम और क्रोध तो मरते दम तक क्या होता रहेंगे, पैदा ही होते रहेंगे, लेकिन उसके वेग को सहने में क्या हो जाए, जो समर्थ हो जाएगा वही योगी है, वही सुखी है। आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, बड़ा इस पे चिंतन भी चलता है, लेकिन वो घटना में सही बताओ उस व्यक्ति का दोष हमें दिखता तो है, हम ये नहीं कह सकते उस व्यक्ति का दोष नहीं है, लेकिन क्या है, काम का जब वेग उद्भूत होता है ना तो सहन नहीं कर पाता, और जब सहन नहीं कर पाता है ना तो कुछ भी करने के लिए क्या हो जाता है, तैयार। अब बाद में उसको पश्चाताप होता है, अरे बाप रे मैंने क्या कर दिया, अब फिर उस सबूत को मिटाने के लिए उसको मारता है, धमकी देता है, तमाम काम करता है। तो एक काम का वेग, क्रोध का वेग कब पैदा हो जाए, किस रूप में पैदा हो जाए, किस उम्र में पैदा हो जाए, ये कहना बहुत ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। और आपने दो दो उदाहरणों को देख ही लिया है। सौभरी ऋषि जल के भीतर घुस के तपस्या कर रहे हैं, वरदान और साप देने में क्या है, सक्षम है, लेकिन काम क्रीड़ा देखा, किसकी, मत्स्य की काम क्रीड़ा देखा, और उनके मन में विकार पैदा हो गया, अधीन बन गए। राजा मानधाता के पास पहुंचते, महाराज जी आपके पास तो 50 कन्याएं हैं, एक कन्या दे दो, आपका क्या बिगड़ जाएगा, कितना बड़ा संसार बसा लिए। यदि उस वेग को उस क्षण सह लेते, इतने बड़े संसार से उस दीनता की प्राप्ति होने से बच सकते थे, नहीं बच सकते थे। इसलिए भाई इस वेग को जो व्यक्ति सह लेवे वही व्यक्ति कौन है, योगी, वही व्यक्ति कौन है, सुखी है। वह वेग कब आ जाए, इट इज इम्पॉसिबल टू नो, यह जानना बड़ा असंभव है। लगता है मैंने काम को जीत लिया, लगता है मैंने क्रोध को जीत लिया, लेकिन कब कहां विकार पैदा हो जाए, लगता नहीं लगता है। अभी रास्ते में जा रहे हो, 10 रुपये गिरा हुआ मिल जाए तो क्या करोगे, उठाएंगे, उठा के गोलक में डाल देंगे, या चल भाई बाबा जी को दे दें, है नहीं, यही होगा ना। 500 गिर गया तो भगवान का प्रसाद मिल गया है सुबह सुबह, और क्या, देखो मंदिर में आने का कितना फायदा हुआ, पहले दिन भगवान ने तुरंत हमारी नियत में क्या जाएगा, 10 में तो हम जीत गए, लेकिन 500 में हमारी नियत क्या हो गई, डगमगा गई, नहीं डगमगा गई, अगर 500 गड्डी मिल गई तो तब तो कहना ही क्या है। चलो जो भी है, तो ऐसे ही एक संत बोलते थे, कथा आती है कि एक संत थे, एक वेश्या थी, वह संत को देख करके कहे, बाबा तेरा रूप, मेरा रूप सच्चा अथवा तेरे गाड़ी के बाल सच्चे। संत बेचारा सर झुका करके चुपचाप चले जाए, क्या जवाब देंगे, और जब भी मिले वेश्या यही शब्द बोला करे। समय बीतता गया बीतता गया, संत जी महाराज की मौत आई, मरने की शैया पे बैठे, लगा कि एक प्रश्न का जवाब मैंने दे नहीं पाया था, किसको, उस वेश्या को। तो भक्त लोग सारे घेरे पड़े थे, भक्तों ने कहा महाराज जी कोई इच्छा, कहा बस उस वेश्या को बुला दो, उसको, उससे मैं बात करना चाहता हूं, उससे मैं मिलना चाहता हूं। भक्तों ने कहा लोग तो मरते समय भगवान को याद करते, बाबा कैसा है कि वेश्या को याद कर रहा है, बताओ। लेकिन अब भक्त भी बेचारे क्या करें, गुरु जी की मरते दम इच्छा पूरी करनी थी, ले आए वेश्या को बुला के लाए, हाँ महाराज जी बताओ। कहा बेटा, ऐसे बोला, बेटा तेरा रूप झूठा था, मेरे गाड़ी के बाल क्या थे, सच्चे थे। कहा महाराज जी ये जवाब तो आप 10 साल या 20 साल पहले भी दे सकते थे। कहा बेटा इस मन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, प्राक शरीर विमोक्ष का यही कह दिया, प्राक शरीर विमोक्ष, ये शरीर जो प्रारब्ध के वेग से मिला है, मृत्यु पर्यंत जो इसके वेग को सह लेवे। तो मैंने अपना अवलोकन हर पल किया कि मेरे भीतर संसार के किसी वस्तु का आकर्षण तो नहीं आ रहा है, चाहे शब्द हो, चाहे रूप हो, चाहे रस हो। तो बेटा मैंने अपना अनुभव अब मृत्यु के काल में बढ़ा हूं, तेरा रूप झूठा है, 2 कौड़ी का है, मेरा अपना स्वरूप डावी का बात, अपना जो स्वरूप है वह क्या है, सत्य है। एक हाथ सबकी आंखें एक तरह से खुली। इसलिए हमेशा हमें हर पल क्या बनना चाहिए, महाराज जी अपने कहते थे साधक बन के रहो ना तो कभी फिसलोगे नहीं, और सिद्ध बन गए ना तो फिसलने के भी अवसर रहेंगे। तो दूसरा है विषयाशक्ति लक्षण। पहला, इसको कैसे दूर कर सकते हो? वैराग्य से। अब वैराग्य कैसे आएगा? थोड़ा विषय भोगों से क्या रहना, थोड़ा सा दूर रहना, नहीं तो बहुत आसक्त हो जाओगे तो आदत पड़ जाएगी। हम तो कोई भी घटना देखते हैं, एक अखबार पढ़ो, 10 दिन अखबार पढ़ो ना, और 11वां दिन न मिले तो ऑफिस में 10 बार घूमता हूं, कहां गया भाई अखबार, कहां गया अखबार। मैं सोचता हूं क्या अखबार की भी गुलामी आ गई, और फिर न मिले तो शाम तक मांग के पकता हूं। अरे ऐसी गुलामी किस काम की जो अखबार ने तुम्हें मांगने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन जानता हूं सब समाचार झूठा है, कुछ नहीं है उसमें। तो इसलिए हमेशा हर पल व्यक्ति क्या जाना पड़ेगा। दूसरा है प्रज्ञा मंद, बुद्धि की मंदता, उसको दूर करने के लिए श्रवण का अभ्यास करना चाहिए। खूब श्रवण करो, क्योंकि किसी को एक बात सुनने में आ जाता है, कोई 10 बार सुनता तो याद आता है। तो भले आपको आज उस शब्द का शब्दाग्रह नहीं लग रहा है, लेकिन 10 बार सुनोगे तो कभी न कभी वह शब्द अटैक करेगा ही करेगा। तो दूसरा क्या है? प्रज्ञा मंद, इसको दूर करने का उपाय श्रवण की अधिकता। तीसरा है कुतर्कश्च, कुतर्क, इसको दूर करने का उपाय है श्रद्धा करो। क्या करना है? श्रद्धा करो। क्या करना है? श्रद्धा। तीसरा है उल्टी बुद्धि रूपी दुराग्रह, इसको दूर करने का है भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति। जब तक वह कृपा नहीं होगी तब तक ये दुराग्रह समाप्त होने वाला है ही नहीं। तो यह भगवान की भक्ति कैसे होवे, इस पे चिंतन हम लोग कब करेंगे? कल से करेंगे, और कल से ग्रंथ भी आरंभ हो जाएगा। आज भूमिका शुरू कर दिया, ग्रंथ तो आरंभ ही है लेकिन व्यवस्थित ढंग से, क्योंकि ज्ञान तो हम सब ने सुना है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन टिक नहीं रहा है। तो टिकने का यही उपाय है, क्योंकि आप में सब में वैराग्य है तभी यहां पहुंचे हो, नहीं तो किसको सोना है। आजकल बहुए घर में 9 बजे तक सो रही होंगी, नहीं सो रही है, नहीं तुम्हारी नहीं सो रही, लेकिन बच्चे सो ही रहे होंगे। तो क्या करना है? आपको सोना बुरा लग रहा था क्या? लेकिन वैराग्य था तभी तो। मैं जानता हूं इतनी दूर से आना, 5 बजे 6 बजे जग करके नहा, 6 बजे चलो तो 7 बजे यहां पहुंच पाते हो, वो भी बम्बई है, इतना ट्रैफिक रहता है। तो वैराग्य भी है, श्रवण भी अभ्यास कर रहे हो। तो बम्बई के लोग प्रज्ञामंद वाले नहीं है, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि न कर लेना, कुतर्क करना शुरू कर देना। थोड़ी सी क्या करना? श्रद्धा है, श्रद्धा है तभी बाबाओं को प्रणाम भी करते हैं। नहीं, आप लोग हमसे बड़े बड़े धनीपति हैं, क्यों प्रणाम करेंगे? तो कहीं श्रद्धा भी है। लेकिन चौथा है कौन सी? भगवान की कृपा होवे तो उल्टी बुद्धि रूप दुराग्रह दूर होगा। तो वो कैसे कृपा हो, कैसे भक्ति होवे, भक्ति का स्वरूप क्या है? जो हम भक्ति करते हैं, ओम जय जगदीश, अरे यही भक्ति है और कुछ भक्ति है? इस पे चर्चा हम लोग आगे जानने की इच्छा करेंगे। तो आगे की कथाओं में, इन 15 दिनों में ये सब चर्चा होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।